ये भक्त जन साधन सेवा संघ के सब सदस्या बहनों भाइयों, आज मैं श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय का प्रारंभ करना चाहूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 16वां अध्याय श्री भगवान उवाच। अभ्यं सतम शुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आजवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव धर्मनीय अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, स्ट्रॉन्ग विल पावर, सात्विक दान अच्छे ढंग से दान देना, इंद्रियों का दमन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, यज्ञ स्वाध्याय प्रतिदिन ग्रंथों का अध्ययन करना और कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, ये नहीं कि कर्तव्य करना पड़ा तो बस कष्ट आया तो पीछे हट गए, और शरीर मन वाणी की सरलता, मन और वाणी से हमें बहुत सरल होना चाहिए। श्लोक 2, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति पैशुन दया भूतेश बोलो लुप्तम मार्दवम ही चापलम। अहिंसा सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना, चुगली ना करना, प्राणियों पर दया करना, संसार के विषयों में ना ललचाना, अंतःकरण को कोमल रखना, अकर्तव्य में लज्जा करना, चपलता का अभाव। अब आगे चलते हैं, तीसरा श्लोक है, तेजा क्षमाधि सोचम अद्रोह नात्रिमानिता भवंति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। तेज क्षमा धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना, मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है, दैवी संपदा जिनके पास है उनके ये लक्षण है जो हमने पहले 2 श्लोकों में पढ़े। श्लोक 4, दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। हे पृथानंदन, दम्भ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण है। हम इस अध्याय में 2 प्रकार की संपदा मतलब संपत्ति बताई गई है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। पहले 2 श्लोकों में तो दैवी संपदा का वर्णन मिलता है, वो अब आया 4 श्लोक में आसुरी संपदा, राक्षस कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। श्लोक 5, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय श्रीमता माँ सुचा संपदम देवी अभिजातो असी पांडवा। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ हो इसलिए तुम चिंता मत करो, जीव एक और भगवान है और एक और संसार है। जीव के एक और तो भगवान है और एक और संसार है। जैसे आप अपने को देखो, मैं अपने को देखती हूँ, सचमुच ऐसे ही है, हम बीच में हैं। जब वह भगवान के सम्मुख होता है तो उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार के सम्मुख होता है तो उसमें आसुरी संपत्ति आती है। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, दूसरों का सुख चाहना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख जाना जड़ता है, भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदि के लिए करना जड़ता है। चेतना मुख्यता से देवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। वो दोष है शरीर संसार की सत्ता और महत्ता से विकार करके उसे स्वर्ग जोड़ना, ये मूल दोष है, जड़ है आसुरी संपदा की। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता से विकार करके उसे स्वर्ग जोड़ना, ये दैवी संपदा की जड़ है। जब तक गुणों को साथ गुण रहते हैं तब तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अगुण ना रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है, ये आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता। अभिमान न होने के कारण अर्जुन को अपने में गुण श्रेष्ठा नहीं दिखते, इसलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति है, भले वह तुम्हें न दिखे। गीता में माँ से क्या चल दो बार आया है, एक यहाँ दूसरा अठानवे अध्याय के छठवें श्लोक में। ये प्रसादन के विषय में अठानवे अध्याय में सिद्धि के विषय में चिंता न करने के लिए आए हैं, इसलिए भक्त को इन दोनों विषयों में चिंता नहीं करनी चाहिए। श्लोक छे दो भूत सर्वलोके अस्मिन् देवासुर देवो विस्तृषा प्रोक्ता पार्थ में शुरू। इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी को सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनन विद्वा आसुरा न सोचम नापि नाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी प्रति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते, क्या कि कहाँ हमें अपना मन लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो मन या शरीर और उनमें ना तो बाया शुद्धि होती है, ना उनका आचरण श्रेष्ठ होता है और ना ही वो सच बोलते हैं। और फिर आसुर मनुष्य केवल अपना सुख आराम अपना स्वार्थ देखते हैं, जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में वो लग जाते हैं, और जिससे दुख मिलता दिखे स्वार्थ सिद्धि होता ना दिखे उससे वो हट जाते हैं। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति ये शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राण में वो रहने के कारण असल मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती, वो शास्त्र पढ़ते ही नहीं। असल स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते भी नहीं, अगर सुन भी ले तो उसे समझ सकते ही नहीं। कभी संत महात्मा को शास्त्र की बात सुनने पर वे उन्हें स्वीकार ही नहीं करते। श्लोक 8 असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरीश्वरम् अपर सपर सम्भूतम् किं मन्यते कामहेतुकम्। ये कहा करते हैं कि संसार असत्य है, बिना मर्यादा के है, बिना ईश्वर के अपने आप को केवल इसी पुरुष के सेव से पैदा हो मानते हैं, इसलिए काम इसका कारण है। इसके स्वयं क्या कारण है, वो कारण हो ही नहीं सकता, कौन है असुर है। श्लोक 9 एतम दृष्टि दुष्टात्मान अल्प बुद्धिया कर्मानु शायद जगतो हिता। इस दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, योग कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, इन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए होता है। श्लोक 10 काम आशित्या दुष्पूरम दम्भमान मदान्विता मोहाद्विलिप्त रसात् ग्रहण प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दम्भ अभिमान और मद से चूर रहने वाले तथा पवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुरा ग्रहों को धारण करके संसार में बिखरते हैं। ये है आसीन भूषण। श्लोक 11। चिंता परिप्रेमया चा प्रलयान्तानुपाशिता कामोपभोग परमा यथा विदिति निश्चिता। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाले अपार चिंतों का आश्रय लेने वाले पदार्थों का संग्रह करने वाले और उनके भोगों में ही लगे रहते रहने वाले जो कुछ है वह इतना ही ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। श्लोक 12। आशा पाशतः वद्धा काम क्रोधा परायणा कि हम ते काम भोगाथ अन्य अयना अनाथ समुचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राय होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। जब तक मनुष्य का संबंध शरीर और संसार के साथ रहता है तब तक उसकी कामनाओं का अंत नहीं होता। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भी आया है कि ऐसे मनुष्यों की बुद्धि अनंत तो बहु शाखाओं वाली होती है। ये कारण कि उन्होंने अविनाशी तत्व से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी है और उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया है। असल स्वभाव वाले मनुष्य काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में रहेगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ है वह कब तक वश में रहेगा, मौका पड़ते ही बर्बाद करेगा। अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होता है। अब मैं आपको श्री रामदास सूर जी की जो उन्होंने स्वामी सेवकदास जी महाराज लाओ मिरेकल लिखी है उसी के विषय में हमने कुछ दिनों से स्वाध्याय किया। हम मैं उनका लास्ट जो पैरा है जो उन्होंने ट्रिब्यूट टू स्वामी जी लिखा है उसको पढ़ के सुनाती हूँ। ये ट्रिब्यूट टू स्वामी जी। आई सल्यूट टू दोज हु आर अपराइट इन लाइफ एक्शन एंड डीड्स हु नेवर बेंड देयर नीज बिफोर इंसोलेंट माइट who have a benevolent and compassionate heart, who do not bother for their own wishes and desires, but work for the betterment of sufferings of humanity. I salute to those who are clear at heart and bear no ill will for anybody, who lead the mankind to achieve the higher goals for spiritualism, who stand like a lighthouse in the adverse circumstances and guide their followers through thick and thin, who appear like a silver lining in the dark clouds of life, who become a light of hope in the dark tunnel of worldly affairs. I salute to those who remain even-minded in defeat or victory, who can sacrifice anything for the benefit of mankind, who perfect any body, whosoever comes to take refuge and shelter from them, who never leave their devotees at the mercy of winds and waves. I salute to those who have realized their own self, who are not bound by the three modes of the matter, who dwell in pure intelligence and merge their mind with the universal mind, who do not lose their equilibrium of mind in laws of gain, in happiness or disaster, in comforts or sufferings, in poverty or prosperity. I salute to Swamiji. For you are everything to me. My whole existence bows down before you. My broad forehead bows down to the dust of your feet. I salute to you a million times and shall continue to salute you thousands of millions of times till eternity indeed. ये श्री रामदास शिव जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है और स्वामी जी को प्रणाम किया है। अब हम रामलाल जी की उन्होंने मुख छपने वाले ने उनकी दी राइटर के विषय में लिखा है। द राइटर श्री रामलाल सूद retired principal born on 7th April 1938 in Kullu district of Himachal Pradesh. He is the elder brother of Shri Ma Gita Ji, who is one of the oldest members of Mahadevi Tirtha and a devotee of Swamiji Maharaj. From the very beginning, he regarded Swamiji as a friend, philosopher and guide of his life. The writer is an exponent of Indian philosophy and thought, meditation and yoga. He has also keen interest in Ayurveda, astrology, homeopathy, poetry and literature. He served the education department for 40 years and after retirement he devotes his time in social service for the benefit of mankind. In this pocketbook, he has unfolded the law of miracles as incited and practiced by the great Swami Sevak Das Ji Maharaj. Inhi shabdon ka saath Jai Mata Di Gita.